गिरिराज जी का एक मंत्र उच्चारण करेंगे उनके वंदन के लिए, गिरिराज भगवान के वंदन के लिए। नमस्ते गिरिराजाय। सब लोग एकदम अच्छी तरह से हाथ जोड़ के, सामने से ऐसे जोड़कर सीधे बैठकर, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंद दायिने, परमानंद दायिने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन धाम की जय हो, की जय। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। आप जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ सब लोग आपके आगे से जाएंगे, ध्यान रखना। आपको आप सबको आपके पीछे करना है, तभी आपको फिर ठीक रहेगा। और आप उनको चिपक के बैठना, क्योंकि आगे नहीं आएगा उसके। ये थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अभी वो इतने बार किया है ना, अभी तो हाँ डेली एक्सपीरियंस है। तो जैसे गौरांग प्रभु जी ने कल आपको पूरा इतिहास बताया है ना, तो सब लोग अपना घंटियाँ बंद कर देना। हाँ, सब घंटियाँ बंद हो जाएंगी ना, अपनी भी घंटी बंद कर लेते हैं, है ना। क्योंकि भगवान को संपर्क करने के लिए विश्व में बहुत सारी बाधाएं मौजूद हैं ऑलरेडी। जब जब आप भगवान से मिलने का प्रयास करते हो ना, तो बहुत सारी बाधाएं आ जाती तुरंत। उसको क्या कहते हैं? उसको माया कहते हैं। कृष्ण सूर्य समा, आगे कृष्ण सूर्य सम, माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाई माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, जहां कृष्ण होते हैं वहां माया नहीं होती है, और जहां माया होती है वहां कृष्ण नहीं होते हैं। यू हैव टू चूज आइदर वन ऑफ टू, यू कैन नॉट चूज बोथ। हाँ, कृष्ण भी लेंगे थोड़े माया भी लेंगे, जो साथ बस साथ चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, जहां कृष्ण रहते हैं वहां माया का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये आपके हाथ में है, कृष्ण को बुलाना है कि माया को बुलाना है। लेकिन एक बात उसके अंदर है, गड़बड़ वाली बात, कि अगर कृष्ण को नहीं बुलाएंगे तो अपने आप माया वहां रहती है। बाय डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना वो लैपटॉप में, डिफॉल्ट सेटिंग। तो आप कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप वही चित्रपट आएगा, वो जो सेटिंग किया रखा है। हाँ, तो कैसा है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूलकर लोग, हम लोग दुनिया को भोग लेना चाहते हैं। तो क्या होता है, निकटस्थ माया तारे झपट यो धोरे, वो बात उधर ही खड़ी है। वो आपको कृष्ण को भूलने की देर, वो अपना काम तुरंत चालू कर देती है। इसलिए अगर कृष्ण नहीं है तो बाय डिफॉल्ट माया ही रहती है। इधर कोई ग्लास है क्या? ग्लास, कोई ग्लास तो है नहीं इधर भी। ग्लास में आधा ग्लास पानी है, तो आधा ग्लास में क्या होता है? आप आधा ग्लास पानी खाली कर देंगे, क्या होगा पूरा ग्लास में? बाय डिफॉल्ट उसमें हवा आनी है। अगर ग्लास पानी से फुल करेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, खाली पानी है। लेकिन जैसे पानी कम होता जाएगा, हवा को बुलाना नहीं पड़ता है, हवा आ जाइए अपनी जगह ले लीजिए, वो बाय डिफॉल्ट आ जाती है। वैसे आपने जीवन में कितने कृष्ण हैं, उतनी बाकी सारी जगह माया ऑलरेडी ऑटोमेटिक घिरे रहती है। तो गौरांग प्रभु जी कल बता रहे थे ऐतिहासिक रूप से कि इतना सारा वातावरण यहाँ पर निर्माण करने का प्रयोजन क्या है, कि जो वृंदावन धाम भगवान के खेलने की भूमि जो है, वृंदावन धाम में यहाँ से बहुत दूर है, कितने लोग वहाँ जा पाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। कितने परसेंट लोग जा चुके हैं वो भी एक प्रश्न है। तो जो लोग जा नहीं पाते हैं उनको भी वृंदावन धाम का एक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, इसलिए धाम को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया गया है। हम लोग मंदिरों में मूर्ति प्रतिष्ठापना करते हैं ताकि भगवान का हमारे पास में कहीं परिचय हो, संपर्क हो, दर्शन हो, कथा सुनने को मिले, उनका नाम जप करने का मौका मिले, उस सेवा करने का मौका मिले, कुछ प्रसाद लेने का मौका मिले। तो हम विग्रह को स्थापन करते हैं, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, है ना, कृष्ण बलराम, ऐसे विग्रह स्थापन करते हैं। तो ये प्रयास जो है वो धाम को स्थापन करने का प्रयास है। धाम में विग्रह में क्या अंतर है? विग्रह धाम में होता है और धाम में और बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे धाम में वन होते हैं, फॉरेस्ट, नेचुरल एटमॉस्फियर। धाम में और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जलाशय, वाटर पॉन्ड्स, बड़े छोटे, फिर झरने होते हैं, फिर नदियाँ होती है बहने वाली, फ्लोइंग वाटर, रिजर्वायर ऑफ वाटर यानी तालाब, सरोवर, कुंड, पर्वत भी होते हैं धाम में। और विग्रह, सर और वन, ये तीन वृंदावन धाम के प्रमुख अंग हैं, विग्रह, जलाशय और फॉरेस्ट। तो ये तीनों भगवान के एक पुत्र के पुत्र के पुत्र थे। पहला पुत्र प्रद्युम्न, रुक्मिणी का, प्रद्युम्न का विवाह हुआ उसका पुत्र अनिरुद्ध, उसका विवाह उसका पुत्र वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को कृष्ण ने जाने के पहले बताया था कि मैं जाऊंगा ना तो मैंने जहाँ जहाँ लीलाएं की वो सबको आप संवारना, उस स्थानों को, ताकि मेरे बाद जहाँ जहाँ मैंने लीलाएं संपन्न की वहाँ पर लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो कुछ कुंड तो भगवान के समय पर बने थे, जैसे विमल सरोवर है, राधा कुंड, श्याम कुंड है, मानसी गंगा है, और कुछ कुंड उन्होंने बाद में बनाए, जैसे मोती कुंड है, रत्न कुंड है, जो तभी नहीं थे लेकिन उस लीला के स्मृति के लिए वो बाद में बनाए गए। तो आज हम कहते हैं कि इसके किनारे पे भगवान ने मोतियों की खेती की थी, मोती कुंड के किनारे, और इसके किनारे भगवान ने डायमंड की खेती की थी, रत्न कुंड के नाम से, वो बाद में बनाए गए। लेकिन वज्रनाभ ने हमारे लिए, आपके लिए वृंदावन धाम को इस तरह से संवारा कि आज भी वो आपको दिखाई पड़ता है। थोड़ा जीर्ण हो गया है, थोड़ा सा पुराना हो गया है, कोई टूटा फूटा भी है, लेकिन है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और हमारे आप लोगों को विनती है कि जितना हो सके जल्दी जाइए, क्योंकि कुछ समय के बाद में वो भी और जीर्ण हो जाएगा और फिर लुप्त भी हो सकता है, फिर नष्ट भी हो सकता है। फिर आप कहेंगे यहाँ पर मैं 10 साल पहले आया था ना तो यहाँ पर मोती कुंड था, अभी केवल जमीन है, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि काल के प्रभाव से ये सब नष्ट होते जाता है। तो इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ बनाया है कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं पहले आकर यहाँ पर अनुभव करें, वृंदावन के भाव को महसूस करें, अनुभव करें, अनुभूतियों अनुभूति करें, ताकि हमको कृष्ण के घर जाने का मौका मिले, वो अनुभूति प्राप्त हो। सब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के घर में आने की इच्छा है? कितने लोगों को है? क्योंकि वीडियो में इतना दिखा है, क्या कहें आपको, इतने बड़े बड़े मोर वहाँ घूमते हैं, बड़े बड़े गार्डन्स हैं वहाँ पर, वॉकवेज हैं, बहुत सुंदर सुंदर है, तो उत्सुकता रहती है ना कि हम भी जाके देखना चाहते हैं। लेकिन वो तो एक सामान्य इस विश्व के जीव का घर है, यहाँ पर हम भगवान के घर की बात कर रहे हैं। ये वृंदावन धाम क्या है? भगवान का निज धाम है। तो वृंदावन में आना मतलब कृष्ण के घर आना। जैसे आपके घर आना, आप मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे बेडरूम्स हैं, ये मेरे हॉल है, ये मेरा पलना है, ये मेरा रसोई है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा साउंड सिस्टम है, ऐसा आप दिखाते ना, टूर दिखाते ना घर पे। जब घर की पूजा होती है ना तो क्या होता है, कार्यक्रम क्या होता है, टूरिंग द हाउस, द होस्ट विल गो 51 टाइम्स टू टेक द गेस्ट टू शो द हाउस, देखो ये मेरा बेडरूम है, यहाँ पर ये टाइल लगा है, ये इटली से आया है, जर्मनी से आया है। लेकिन वृंदावन धाम ये कृष्ण का घर है, और उसकी विशेषता क्या है कि उस घर में कृष्ण भगवान के रूप में रहते नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये, अपने आप को भूल कर रहते, वो एक सामान्य जीव बनकर रहते हैं, किसी का पुत्र, किसी का फ्रेंड, किसी का गर्ल बॉयफ्रेंड, इस तरह सामान्य व्यक्ति बनकर रहते हैं कृष्ण। ही रिमेन्स देयर एज अ ऑर्डिनरी बॉय और ऑर्डिनरी गर्ल। तो ये विशेषता है। द्वारका में आप जाएंगे और कहीं श्रीरंगम में जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, जगन्नाथपुर जाएंगे, तो भगवान के ठाट में रहते हो, पूरे ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। लेकिन ब्रज में, वृंदावन में आने के पहले वो सारा ठाट छोड़ देते हैं, उसको ऐश्वर्य कहते हैं, सब छोड़ देते हैं। क्योंकि ना जैसे कोई बड़ा आदमी होता है ना, बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध होता है, समझो उसको एक सॉक्स खरीदने हैं, खरीद सकता है क्या वो? अरे सॉक्स जाएगा खरीदने के लिए, सब रिपोर्टर उसके पीछे लग जाएंगे, सब फैंस लोग आएंगे, अरे तेंदुलकर तेंदुलकर, अरे तेंदुलकर, बेचारे को सॉक्स कहाँ लेने को मिलेगा? हमारी और हम बीवी और हम खड़े रहेंगे तो बोले और 10 निकालो, ये कलर है क्या, वो कलर नहीं क्या, ऐसा आराम से निकाल के लेंगे एक जोड़ी, लेकिन 15 जोड़ी देखेंगे। ये सुख जो है ना वो हमारे लिए है, किसके लिए है? सामान्य व्यक्तियों के लिए वो सुख है। आप कहीं भी जाके पाव खरीद सकते हो, ब्रेड खरीद सकते हो, टोस्ट ब्रेड खरीद सकते हो, जो चाहे खरीद सकते हो, घंटों घंटों शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि आप एक सामान्य व्यक्ति हो। जैसे आप VIP बन जाओगे ना, तो सॉक्स लाना आपके नसीब में नहीं होगा। तो कभी कभी हमारे भारत के क्रिकेटर्स को भी ऐसा जगह जाने की इच्छा होती है कि जहाँ कोई हमको पहचाने नहीं, वो देश जिसमें कोई क्रिकेट खेलता भी ना हो, तो क्रिकेट क्या चीज़ है मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह जाते हैं छुट्टी बनाने के लिए, सो दे कैन बी देमसेल्व्स, यू नो, कहाँ जाना है, क्या हाफ पैंट में घूमना है, फुल पैंट में घूमना है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, फुटबॉल खेलना है, जो खेलना है कोई जानता नहीं उनको, नोबडी नोज, सो दे आर हैप्पी। जैसे भगवान को भी सब जगह दंडवत प्रणाम, आरती, स्तुति, हाँ, पुरुष सूक्त, ये सूक्त, वो सूक्त गा रहे हैं, सब ऋषिकण आगे पीछे श्लोक बोलते जा रहे हैं, एवरी टाइम ऐसा वो वैभव का अनुभव हो रहा है ना, तो कभी कभी लगता है कि सब छोड़ के ऐसे जगह जाना चाहिए यहाँ पर कोई मुझे जानता नहीं। तो वो कहाँ आते हैं? वृंदावन में आते हैं। राजपाट करने का दिल होता है ना तो द्वारका जाते हैं, भोजन करने का दिल हो गया ना जगन्नाथपुरी जाते हैं, तप करने का दिल हो गया ना, तपस्या, तो कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ जाते हैं। सोने का दिल करेगा ना खाने के बाद, फिर कहाँ जाते हैं? श्री रंगनाथ। और ये सब कुछ छोड़कर केवल खेलने का दिल करता है तो गोवर्धन इको विलेज जाते हैं, वृंदावन धाम, किड जोन, वहां पर जाकर खेलते हैं। तो वृंदावन ये भगवान के खेलने की भूमि है, और विशेष करके सब कुछ भूल कर खेलने की भूमि है। नोबडी नोज, जब माता डांटती है ना, तूने मट्टी खाई, सच बता, मुंह खोल के दिखा, मट्टी खाई तुमने, क्यों खाई है तुमने, ये डांट फटकार केवल वृंदावन में हो सकती है, द्वारका में नहीं। द्वारका में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, सब लोग ऐसे लक्ष्मी नारायण का दर्शन होता है। तो वृंदावन की ये खासियत है। वृंदावन में तीन चीज़ महत्वपूर्ण है, एक वृंदावन भूमि, जो भूमि जो है जिस पर भगवान लीला करते हैं, और भूमि की विशेषता क्या है, वही एक भूमि है जहाँ पर भगवान नंगे पैर चलते हैं। बाकी जगह जाएंगे ना, एक तो सारी भूमि पर मखमल का कवर होता है, मखमली वेलवेट होता है, ऐसा मुलायम होता है कि वहाँ पर चलने से आपको लगा हवा में चल रहे हैं। ऊपर से भगवान उस पर भी चलने का जब विचार करते ना, तो ऐसी चप्पल आती है जो रत्नों से भरी हुई है, जूता, जो भी पादत्राण कह सकते हैं उसको आप, ऊपर से रथ भी आता है, दारुक रथी है, वो रथ लेके आता है। अभी कहाँ कॉन्टैक्ट है जमीन का बताओ, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, ओनली भगवान की सोल तलवों का जमीन के साथ कहीं स्पर्श ही नहीं होता है, वो होता है केवल वृंदावन धाम में, क्योंकि वृंदावन धाम में ना रथ है, हाँ, ना पादत्राण है, ना मखमली क्या कहते हैं उसको, कंतान, रेड कारपेट नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, पैर और भूमि। तो इसलिए वृंदावन की विशेषता क्या है, भगवान के चरण की रज केवल वृंदावन में ही निर्माण होती है, और कहीं चरण रज का कंसेप्ट और कहीं नहीं होता है, कोई है ही नहीं कॉन्टैक्ट, चरण रज के लिए पहले कॉन्टैक्ट होना चाहिए ना, तो ये वृंदावन की विशेषता है। सेकंड वृंदावन का विशेषता यह है कि यहाँ जमुना जी बहती है, ये वृंदावन को बनाने वाली चीज़ें हैं। वृंदावन किस चीज़ से बनता है, एक भूमि है, एक जमुना जी है, और तीसरा क्या है, जोर से बोलो ना, तीसरा है गोवर्धन पर्वत। ये तीनों के बिना, एक के बिना भी वृंदावन अधूरा है। वृंदावन धाम की पूर्णता इन तीन चीज़ों में है, और बाकी फिर अनंत धाम है जो वृंदावन में आके आश्रय लेते हैं। अभी अभी ना मैंने कल प्रभु जी पढ़ा, कल पढ़ा, सुना और पढ़ा कि वसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन शुद्ध एकादशी, यानी माघ वद्य पंचमी से लेकर अगले एकादशी जो भी है, कुछ 9 दिन का समय है, 9-10 दिन का समय है ना, फाल्गुन वद्य पंचमी, क्या कौन सा महीना चल रहा है अभी, एनीवे टेक्निकली छोड़ दीजिए, 16th ऑफ फरवरी से 25 फरवरी तक, आप तिथियां ढूंढ लीजिए, तिथियां जो तिथियां हैं 16 फरवरी से 25 फरवरी तक, ये जो कालावधि है, ये जो तिथियां हैं, हर साल इन तिथियों के बीच में विश्व के सारे तीर्थ धाम जितने हैं वो जमुना जी में आके स्नान करते हैं, और 12 साल के बाद में जब स्नान करते हैं तो उसको वृंदावन का मूल कुंभ मेला कहते हैं, जो इस साल है, इस साल अभी चालू होगा वृंदावन का बड़ा कुंभ मेला, इलाहाबाद में चालू है वृंदावन का कुंभ मेला, 16 तारीख से 25 फरवरी तक है। तात्पर्य क्या कहने का है कि ये तीन चीजें वृंदावन में हैं और बाकी सारे तीर्थ धाम जितने भी हैं वो आके वहां रहते हैं, निवास धारण करते हैं, क्योंकि सारे तीर्थ धाम जितने भी हैं वो अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं, वृंदावन धाम से, इसलिए यहाँ पर आके आश्रय लेते हैं, यहाँ आश्रय लेके खुद की उन्नति चाहते हैं, खुद की प्रगति चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान का संग चाहते हैं, भगवान की लीलाओं को देखना चाहते हैं। तो उसमें से हम अभी गोवर्धन के किनारे बैठे हैं। हाँ देखो संक्षेप में आपको कहानी बताता हूँ, समय हमेशा कम ही रहता है, दो कारण से कम होता है, एक तो कलयुग है और दूसरा एक कारण है, बताइए दूसरा एक कारण समय क्यों कम होता है, क्योंकि लोग हमेशा देर से आते हैं, ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं ना, मानव निर्मित समय की त्रुटि कपैती पैदा होती है जब हम देर से आते हैं, कोई बात नहीं, तो कैसा विस्तार पूर्वक, मध्यम और संक्षिप्त, ऐसे कथा के अनेक प्रकार होते हैं, तो हम लोग संक्षिप्त कथा करेंगे। तो गौलोक वृंदावन जो भगवान का धाम है ना, वहाँ पर भगवान ने रासलीला किया और रासलीला में जबी भगवान के आँखों से अश्रु बहे, गोपियों के आँखों से अश्रु बहे, राधा रानी के आँखों से अश्रु बहे, सभी लोगों के आँखों में अश्रु बहे नृत्य करते समय, और शरीर से स्वेद निकला, दिव्य सुगंधित जल निकला, वो सारा एकत्र होकर एक पौंड बना, वो पौंड जो था ना सरोवर इतना सुंदर था कि उसका दर्शन करने के लिए खास राधा रानी आई, क्या आई वॉन्ट टू सी दैट ब्यूटिफुल पौंड, तो गोपियाँ आई, राधा रानी आई और देखा तो इतना तेजस्वी, इतना जाज्वल्य मान, इतना उसमें क्या तेज था उसमें, और स्फटिक जल था, इतना सुंदर था, तो राधा रानी ने कहा कि क्यों ना इस जलाशय को नदी का रूप दिया जाए, क्यों ना प्रवाहित किया जाए उसे, तो वो जो कुंड प्रवाहित हुआ वो बनी यमुना देवी, वो यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुई। और फिर राधा रानी ने भगवान से कहा कि हमने रासलीला तो किया लेकिन वो आम जनता के बीच में किया, यानी पब्लिक प्लेस में किया, अभी मुझे आपके साथ लीला करने के लिए एक प्राइवेट जगह की जरूरत है, एकांत, जहाँ पर केवल हम लोग गिने चुने होंगे, जो लोग जिनके पास पास होगा, जिनके पास पैंड लगाया होगा उनको ही एंट्री मिलेगी, ऐसे कुछ व्यवस्था करेंगे, एकांत वाली प्राइवेसी और स्पेस। तो जब ये राधा रानी कह ही रही थी तब कृष्ण के वक्षस्थल से एक नील तेज प्रकट हो गया और वो जाकर ब्रज के वृंदावन के गोलोक वृंदावन की भूमि पर जाकर स्थित हो गया, और उस तेज जहां पर स्थित हो गया वहां से एक पर्वत बढ़ने लगा, उसका जन्म हुआ, और वो विस्तार में और था में और ऊंचाई में सब तरफ से बढ़ने लगा, एक योजन होता है ना योजन, वो 8 मील का होता है, ऐसे करोड़ों योजन का वो पर्वत बना। फिर भगवान को रोकना पड़ा उसको, अरे बस 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 अभी और मत बढ़ो, ही स्टॉप्ड इट फ्रॉम ग्रोइंग, और वो है गोवर्धन पर्वत। इस तरह से गोवर्धन पर्वत का जन्म जो है वो गौलोक वृंदावन में हुआ है। पृथ्वी पर कैसे आया, क्योंकि भूमि देवी एक बार गाय का रूप धारण करके रोते रोते गई थी कि मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, कंस जैसे राक्षसों का अत्याचार हो रहा है, रावण जैसे राक्षसों का अत्याचार हो रहा है, तो पहले बार राम बन के आए, फिर कृष्ण बन कर आए, तो उस समय वादा किया था, क्योंकि राधा रानी है ना, उन्होंने कहा हम आएंगे पृथ्वी देवी, चिंता मत करना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दशरथाम, मैं आऊँगा धर्म की स्थापना करूँगा। तो राधा रानी खड़ी थी वहाँ पर साइड में सुन रही थी, तो बेहोश होकर गिर गई, तो कृष्ण ने उनको फिर जल वल छिड़के जगाया और पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं ना इसलिए आप सोच कर ही मुझे मूर्छा आ गई, आप अभी जाने वाले हैं तो मुझे विरह होगा आपका, आई विल नॉट वॉन्ट टू स्टे विदाउट यू। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे सोचा आपने, आप तो मेरे संग जाने वाली हैं, मैं आपको लेके जाके लीला करने वाला हूँ, मतलब मैं तो नहीं आने वाली, लेकिन क्योंकि यत्र गोवर्धन नास्ती यत्र ना जमुना पुलिन, जहाँ पर जमुना नहीं, गोवर्धन नहीं, वृंदावन नहीं, वहाँ से मैं बाहर वृंदावन के निकलती नहीं हूँ, वहाँ जाती नहीं हूँ कभी भी। इसका मतलब क्या हुआ कि राधा रानी और कृष्ण वृंदावनम पादम एकम न गच्छति, कभी भी वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते। तो क्या करते हैं, वृंदावन को साथ के साथ में लेके जाते हैं। अभी आप लोग सब लोग मीरा रोड से कहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए हैं, अपना फ्लैट यहाँ पर लेके आए क्या आप, कांदिवली वाला, मोरा रोड वाला, हाँ जांगीड वाला और सृष्टि वाला, वो अपने ही जगह पर है, आपने यहाँ पर आके अलग रूम लिया है। लेकिन भगवान जब आते हैं ना अपने धाम को लेकर आते हैं, तो भगवान ने क्या कहा राजा रानी को, आपके मन के इस स्थिति को और विचार को, इच्छा को जानते हुए मैंने गोलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा, पूरी यमुना और पूरा गोवर्धन नीचे ऑलरेडी भेज दिया है। तो क्या फिर मैं आऊँगी, लेकिन और एक शर्त है मेरी, आऊँगी फिर भी जब तक आपको नहीं देखूँगी, आँखें नहीं खोलूँगी, जब तक आपकी ध्वनि नहीं सुनूंगी, कान नहीं खोलूँगी और मुँह भी नहीं खोलूँगी, यानी आई विल रिमेन डेफ डम्ब एंड ब्लाइंड टिल आई कम अक्रॉस यू। जब आपका दर्शन होगा तब मैं आंखें खोलूंगी, कुछ कहूंगी, कुछ सुनूंगी, तब तक मैं ऐसे ही रहूंगी। ये राजा रानी का भाव है भगवान के प्रति। और आज अगर वृंदावन धाम पृथ्वी पर है तो वो केवल उनकी कृपा है, क्योंकि उन्होंने कहा था आई विल नॉट गो विदाउट दिस थिंग्स। अगर आज यमुना है, गोवर्धन है, वृंदावन है, तो केवल राजा रानी की कृपा है। तो गोवर्धन कैसे आया, गोवर्धन आया, एक होता है ना, एक होता है डिसीजन पॉलिसी, ओके करना है, और एक होता है मेथड प्रोसेस कैसे करना है उसको। तो गोवर्धन पर्वत जो है ना, वो द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में जन्म लिया उन्होंने, हिमालय के रेंज में। क्या नाम से जन्म लिया, द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में, द्रोण फादर्स नेम, और बेटे का नाम गोवर्धन। इतना सुंदर था वो वृक्ष पर्वत। तो वहाँ से ना वो आए पुलत्स्य मुनि, काशी से आए। और आप लोगों को सुनकर बहुत खुशी होगी कि भजन करने वाले लोग होते हैं ना, जो भजन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, उनको पर्वत बहुत आवश्यक होता है। या तो पर्वत चाहिए, या नदी का किनारा चाहिए, या तालाब का किनारा चाहिए, जलाशय किनारा चाहिए, या तो समुद्र चाहिए, या तो बगीचा चाहिए, या तो जंगल चाहिए। ऐसे 9 चीज़ें हैं जिनके अगल बगल में या बीच में भगवान के नाम का जप अच्छा होता है। उसमें से एक है पर्वत का शिखर। इसलिए लोग हिमालय जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो पर्वत है, वहाँ पर कई गुफाएं हैं, चोटियां हैं, वहाँ बैठकर बहुत सुंदर ध्यान लगता है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। सिटी में कैसा, जबकि माला लिया ट्रिंग ट्रिंग टिंग 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 कुछ बजता है, या तो फ़ोन की रिंग होगी, या तो दरवाजे की बेल होगी, या तो बीवी पुकारेगी, अरे अजी सुनो, सुना तुमने, ऐसे व्यवधान होते हैं। लेकिन जंगल में गए तो ओम शांति, सर्व जगह शांति होती है, अच्छा मन लगता है। इसलिए हम भी वही जाते हैं भाग के ध्यान लगाने के लिए, है ना। और ऐसी जगह पर भगवान का ध्यान अच्छी तरह लगने से क्या होता है, भगवान की अनुभूति भी आसानी से होती है। लेकिन काशी में कोई पर्वत नहीं है, आज भी जाके देखिए बनारस में कोई पर्वत नहीं है, फ्लैट लैंड है। तो ये काशी के मुनि वहाँ पर आए थे हिमालय में, और उनको ना गोवर्धन बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ें हैं। एक जीवन चलाने के लिए क्या क्या आवश्यक है ना, एज अ सिंप्लिसिटी, हाँ नॉट एज अ ग्रैंड्योर, क्या चाहिए आपको, वो सब कुछ उसके अंदर है। जड़ी बूटियाँ हैं, फल फूल है, गाय को चरने के लिए घास है, झरने हैं, तालाब है, बैठने की जगह है, सोने की जगह है, गुफाएं हैं, प्राइवेसी है, ओपन जगह है, पब्लिक वन है, एवरीथिंग इज देयर, प्लस सौंदर्य है, शुद्ध हवा है। तो उनका मन आ गया उसके ऊपर। तो द्रोणगिरी के पति के पास, पिताजी के पास गए, उन्होंने बोला कि पिताजी महाराज, आपका पुत्र मुझे चाहिए, आपकी अनुमति चाहिए कि मैं उसको उठा कर ले जाऊँ। तो पिताजी को तो बहुत दुख हुआ, बेहोश हो गए कुछ समय के लिए, लेकिन पुत्र बहुत खुशी खुशी से इनके पीछे खड़ा हो गया, आइए महाराज मैं चलता हूँ। फिर पिताजी ने हाँ कर दी। फिर पुत्र जो था गोवर्धन पर्वत, उसने कहा कि आई विल कम विथ यू, बट आई हैव वन कंडीशन। वन कंडीशन इज इफ यू कीप मी डाउन एनीवेयर, आई विल सिट देयर ओनली। अगर आप मुझे कहीं रास्ता में नीचे रखेंगे ना, तो मैं फिर वहीं बैठूंगा, आप मुझे फिर आगे नहीं ले जा सकते। मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है, मैं सीधे यहाँ से उठाऊंगा सीधे काशी, नो स्टॉप, राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम हिमालय टू काशी स्ट्रेट, नो हॉल्ट इन बिटवीन, नॉन स्टॉप। लेकिन गोवर्धन का गंतव्य स्थान क्या है, ऊपर कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ आपको, राधा रानी को क्या बताया था, वृंदावन, गोवर्धन और जमुना जी के साथ। तो गोवर्धन को एंड पॉइंट कहाँ है उसका? वृंदावन, उनको वृंदावन जाना है। तो ये पुलस्त्यमुनि जा रहे हैं उनको लेकर, जैसे वृंदावन आता है ना तो पुलस्त्यमुनि को लघु शंका आती है, हाँ यूरिन का वेग आता है बहुत जोरदार। अभी आमतौर पर उनका पूरा कंट्रोल है, योगी है ना वो लघु शंका दीर्घ शंका सारी शंकाएं उनको प्रॉब्लम नहीं, कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, निद्रा नहीं होती है, भूख पर कंट्रोल है, तो प्यास पर कंट्रोल है, सभी वेगों पर कंट्रोल है उनका। लेकिन उस समय उनको अनावर हो जाता है लघु शंका वेग, तो वो झट से रखते हैं पर्वत गोवर्धन वृंदावन के इलाके में और झट से जाते हैं, लघु शंका निवृत्त होकर शुद्ध होकर लौट के आते हैं। और फिर जब उठाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? नॉट पॉसिबल। जो एक मशरूम या एक कॉटन की तरह उसको उठा कर लेकर आए थे, इतने बड़े योगी थे वो, इतने करोड़ों योजन आकाश में लंबा था वो, उसको ऐसे सहजता से उठा कर लेकर आए थे वो, अभी उठा नहीं पा रहे क्योंकि तभी गोवर्धन की इच्छा थी उठने की, इसलिए वो उठा पाए। अभी उठने की इच्छा नहीं है तो उठा नहीं पा रहे हैं। इसमें क्या सीखना है हमको? भक्ति के बल ने योग बल को परास्त कर दिया। गोवर्धन भक्त हैं भगवान के और पुलस्त्यमुनि योगी थे, तपस्वी थे, तो भगवान ने क्या सिद्ध किया कि आप मुझे तपोबल से नहीं जीत सकते, योग बल से नहीं जीत सकते, केवल भक्ति से जीत सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यच्चस्मि तत्वतः। तो वही बस गए वो। अभी जिस काम से हमने उनको वहां से उठाकर लाया और रस्ते में ये बैठ गए तो वो गुस्सा गए उनको, फिर क्या किया उन्होंने? शाप दिया, रोज तुम एक तिल के आकार से जमीन में धस जाओगे। बोलते हैं मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे ठाकुर जी को मिलना है मुझे यहाँ पर तो आपका शाप भी मैं मंजूर है। तो सत्ययुग में घटना हुई थी, तो रोज तिल 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 धस 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 गए, सत्य गया, त्रेता गया, फिर द्वापर का अंत आया, तभी कृष्ण आए। तब तक तो बहुत नीचे हो गए थे वो, बहुत बड़े थे तभी, फिर भी नीचे थे। तो ये गोवर्धन पर्वत ऐसे हमारे वृंदावन में आ गए हैं, अभी भी धस रहे हैं तिल तिल से। और कहा गया है कि जिस दिन वो पूरे जमीन में धस जाएंगे ना तो घोर कलयुग शुरू हो जाएगा, जमुना जी पूरी सूख जाएगी, एक बूंद भी जल नहीं रहेगा और गोवर्धन धस धस के जमीन तल पर आ जाएगा और बद्रीनाथ जाने का रास्ता अपने आप पर्वतों के मूवमेंट से बंद हो जाएगा। उस दिन घोर कलयुग शुरू होगा और कभी और हम पेड़ के नीचे आएंगे दोपहर को तो बताएंगे घोर कलयुग में क्या क्या होगा। अभी आपको डराने का कोई प्लान नहीं है मुझे, इसलिए अभी आपको केवल खुश करने का प्लान है, इसलिए मैं आपको अभी गोवर्धन की कहानी बताता हूँ। तो अभी सत्ययुग में आए, उधर बस गए और अभी ढस रहे हैं, तो त्रेता आ गया। त्रेता में कौन आ गए? प्रभु रामचंद्र, ऐसे बोलना है, प्रभु रामचंद्र, हमारे परम प्रिय प्रभु रामचंद्र। राम तो हम अपने आप ऐसे बोलते हैं लेकिन जब प्रभु राम का उच्चारण करते तो आदर से करना चाहिए। तो वो जानते ना सीता जी को हरण किया, फिर उन्होंने वो ब्रिज बनाने का प्लान किया, और ऐसा नहीं कि भाई 7 साल का प्रोजेक्ट था तो 15 साल में पूरा हुआ, ऐसा नहीं है, बीच में कोरोना आ गया तो लेट हो गया, ऐसा नहीं था। वो सीता ने मैंडेट दिया था बीच में कि अगर 1 महीने के अंदर आप ब्रिज नहीं अपना आओगे नहीं ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, तो बहुत जल्दी जल्दी बनाता था। दे वर नॉट एट लेजर टू गिव नाइस पेंटिंग टू ईट, नाइस इनॉग्रेशन बाय सब मिनिस्टर, ऐसा कुछ प्लान नहीं था उसका, तुरंत बनाना था उसको। तो उसमें दे वर लुकिंग फॉर बिगेस्ट एंड बिगेस्ट काइंड ऑफ माउंटेन्स, तो लास्ट में ना 7 कोस की जगह रह गई और ये पर्वत भी 7 कोस का था। हनुमान जी आकाश मार्ग से ढूंढ रहे थे कोई बड़ा पर्वत है क्या, एक साथ उठा लूँ, एक साथ रख दूँ, खत्म। तो इसको देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए वो, बोले एक ही उठा लेंगे तो 50 बार उठाने की जरूरत नहीं है। नीचे आए और हनुमान जी कितने पावरफुल है मालूम है आपको? हनुमान जी क्या नहीं कर सकते हैं कि क्या लिफ्ट एनीथिंग, वो तो संजीवनी के लिए भी पहाड़ उठा के आए थे ना, तो उनको आदत थी प्रैक्टिस से रोज की, तो इसको भी उठाने के लिए ऊंचे उतरे। लेकिन इसको पहले तो ऐसा लेफ्ट से बोले उठा लेंगे, हिला नहीं वो, फिर राइट से, ज़्यादा ताकत राइट में होती है ना, राइट में, फिर भी नहीं हिला। फिर दोनों हाथ की पूरी ताकत लगाई फिर भी नहीं हिला। तो सोचे कि देखता हूँ जरा इसका विस्तार कितना है, इस दिशा में कितना है, तो वो उड़कर वो विस्तार देखने लगे तो गोवर्धन जी वहाँ से बढ़ने लगे और उनको एंड मिला ही नहीं, बोला इस तरफ देखते हैं, इस तरफ गए तो यहाँ से बढ़ने लगे तो वहाँ पर भी एंड नहीं मिला। तब समझ गए कोई दिव्य वस्तु है, साधारण जीव नहीं है। दंडवत प्रणाम किया, और पूछा महाराज आप कौन हो, आपका परिचय दो। तो कहा हम गोवर्धन हैं, गोवर्धन पर्वत हैं। तो बोले कि आपने तो पूछा नहीं कुछ, ने आगे से उठाने लगे, हाँ इसलिए मैंने आपको विरोध किया उठने में, आपने बताया नहीं कुछ। तो फिर संक्षेप में रामायण बताया, अभी उसके लिए भी समय नहीं, वहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया ना, तो रामायण का पूरा कथा कैसे बताएंगे, संक्षेप में बताया एसेंस, तो समझ गए। तो ना रूई की तरह हल्के हो गए और तुरंत उठ गए, क्योंकि मेरे प्रभु जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ उन्हीं की सेवा में ले जा रहे हैं, तुरंत उठ गए वो। लेकिन अलास क्या हुआ,
काम पूरा हो गया
था। जैसे ऊपर उठाया ना आकाशवाणी हो गई कि हमारा सेतु बंद पूरा हो गया है, अभी पर्वत मत लेके आना कोई, नो एक्स्ट्रा पर्वत रिक्वायर्ड। तो वो नीचे रख दिया। उस समय गोवर्धन इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि हनुमान भी दंग रह गए। हनुमान जी भगवान के बड़े भक्त हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े भक्तों का दर्शन किया है, सबको जानते हैं वो बड़े बड़े भक्तों के लिए। ऐसा प्रेम ऐसा रोना भगवान की विरह में कभी देखा नहीं था, वो खुद दंग रह गए। वो जाके राम जी को रिपोर्ट किया कि ऐसा कोई भक्त मुझे मिला, आपका पर्वत रूप में था वो, इतना रोया कि मैं हैरान हो गया, मेरा अभी हृदय गदगद हो गया। लेकिन समय नहीं था बहुत समय रोने के लिए, इसलिए मैं भी वापस आ गया। तो उन्होंने कहा कि एक मैसेज भेजो उसको, आपको अभी भी दो ऑप्शन देता हूँ मैं, अगर अभी आना है दर्शन करने के लिए तो कुछ समय मैं आपके ऊपर चल के लंका जाऊँगा, फिर युद्ध करूँगा, फिर युद्ध जीतूँगा रावण को मारकर, तो विमान से जाऊँगा, फ्लाइट से जाऊँगा, पुष्पक विमान से जाऊँगा ना, अभी चल के जा रहा हूँ पैदल वनवास में, तब मैं फ्लाइट से जाऊँगा, तो मेरा चरणों का आपका संपर्क, मेरा दर्शन आपको कुछ समय के लिए मिलेगा, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू बताया जाए, ऑप्शन नंबर टू, अगले युग में मैं आऊँगा कृष्ण के रूप में और 11 साल 52 दिन यहीं रहूँगा, दिन रात आपके यहाँ लीला करूँगा, गौचारण करूँगा, रास करूँगा, गुफा में रहूँगा, गुफा के बाहर रहूँगा, झरनों का पानी पीऊँगा, यहाँ बैठूँगा, हर प्रकार की लीला करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, कौन सा ऑप्शन लिया, बुद्धिमान व्यक्ति है वो, बोले ठीक है ऑप्शन नंबर टू, आई विल वेट, आई विल नॉट टेक फॉर सेटल फॉर स्मॉल थिंग्स। तो ये जब मैसेज पहुंचाया गया तो उन्होंने ऑप्शन नंबर टू तय किया। तो हनुमान जी लेकर आए थे मैसेज, तो उन्होंने कहा ऑप्शन नंबर दो तो मैंने तय कर लिया है, लेकिन बहुत लंबा फासला है विरह में, मैं अकेला उसको पार नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपके संग की जरूरत है, आप भी मेरे साथ यहाँ रहो और मेरा दुख बांटते बांटते समय बिताने के लिए मदद करो। तो यहाँ पर हमारे हनुमान जी पूंछड़ी का लौठा बाबा के रूप में रह गए, और एक रूप उनका चला गया राम जी की सेवा में, और एक रूप यहाँ छोड़कर गए, मतलब उस रूप में रहे यहाँ पर, और जब तक कृष्ण का अवतार नहीं हुआ तब तक दोनों उस विरह भाव में यहाँ पर भगवान की याद करते रहे। तो वो पर्वत के कोने में हमको दर्शन कराएंगे, पूंछड़ी का लौठा बाबा वो हनुमान जी के अवतार हैं, और वो वहाँ बैठकर उन्होंने जब तक भगवान नहीं आए भगवान का विरह में ध्यान किया, भगवान जब आए तो क्या किया, तो क्या किया, तो भगवान के साथ में लीला किया, भगवान का फ्रेंड बने, वो बाल बाल बने, गौचारण में सहायता किया, भोजन खिलाने में सहायता किया, ऐसा इसका इतिहास है। फिर उसके बाद में भगवान ने आए, फिर भगवान ने उन्होंने भगवान ने वादा किया था उनको कि जब 11 साल 52 दिन के लिए वृंदावन में आऊँगा ना मैं लीला करने के लिए, तो आपके अंदर भी लीला करूँगा, यानी गुफा के अंदर भी लीला करूँगा, इर्द गिर्द भी करूँगा, आसमान में भी, मतलब आसमंत परिवार में भी करूँगा, जलाशय में करूँगा, झरने में करूँगा, वन में करूँगा, सब लीला करूँगा आपके पास, वो भी कैसे, अंतरंग लीला करूँगा, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम से परफॉर्म करूँगा। तो इसलिए गोवर्धन का जो अस्तित्व है ना वो बहुत विशेष है। संक्षेप में कहा जाए तो गोवर्धन भगवान का ऐसा एक भक्त है जो हमेशा सौख्य एक दाता, यानी हर प्रकार के सुख को देने वाला एक ही है वो गोवर्धन। सखाओं को भी सुख देता है, गायों को भी सुख देता है, गाय चरती है, गोवर्धन नाम ही उसका दिया है ना, गाय उसका घास खाकर बड़ी होती है, दूध देती है। सारा ब्रज का जो बिजनेस है सस्टेनेंस सस्टेनेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड है। कृष्ण लीला का सहायता है, वृक्ष बेलियों को संवारते हैं, संभालते हैं, उनको पोषण देते हैं, सभी जितने भी भगवान के सेवक हैं उन सबको पोषण देने वाले हैं, सबके एक दाता, ऐसा उसका रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनके दशक में वर्णन किया है उनका। एक और एक जगह का आपको मैं कथा बताता हूँ ताकि आपको देखने में आनंद आएगा उसका। वो जगह का नाम है मानसी गंगा, आपके पीछे जलाशय बहुत सुंदर। और मानसी गंगा की विशेषता ये है कि मानसी गंगा ब्रज का सबसे बड़ा तालाब है, सागर की तरह है वो, ह्यूज, और गोवर्धन के बीच में है, मध्य स्थान में है। उसकी लीला क्या है, एक बार नंद महाराज उसके उनके पिताजी कृष्ण भगवान के सारे ग्वाल बाल गोपियाँ बैठकर गंगा जी का महात्म्य सुन रहे थे, स्टोरी ऑफ गंगा, हाउ ग्रेट गंगा इज। तो क्या हुआ कि वो कथा में सुन रहे हैं, मतलब ये वो कथा चल रही है, वो सुना रहा हूँ आपको। हाँ, वो जो कथा करने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि एक बार गरुड़ जी एक सांप को पकड़कर, उनका बक्ष है ना वो, उसको पकड़कर जा रहे थे। तो जा रहे थे तो गंगा जी के ऊपर से जाने लगे, तो पक्षी कैसा होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, मजा लेते हुए जाते हैं ना वो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही लेन में जाना है, वो विमान जाता है एक लेन में। लेकिन पक्षी कैसा है, ऊपर नीचे जैसे अच्छा लगे वैसे। तो नीचे झुका ना तो हाथ के हाथ में पकड़े हुए सांप की पूंछ जो है ना वो गंगा जी के जल को स्पर्श हो गई। फिर क्या हो बताइए, कुछ ना कुछ तो होना ही है ना। नहीं, जैसे ही सांप के पूंछ का स्पर्श गंगा जी के जल को हुआ, वो सांप का रूपांतर विष्णु दूत में हुआ, यानी वो लिबरेट हो गया, मोक्ष हो गया उसका, ही गॉट लिबरेटेड, उसको वैकुंठ का शरीर प्राप्त हुआ विष्णु दूत का। तभी हाथ में एक दोरी थी, वो ऐसा हाथ भी लंबा हो गया उसका ना, क्योंकि हाथ में आदमी आ गया उसके। अभी देखा तो क्या, चार भुज वाला पीताम्बर पहना हुआ, शंख चक्र पद्म गदा धारण किया हुआ व्यक्ति उनके हाथ में है, तो समझ गए कि गंगा जी के स्पर्श से उसका उद्धार हो गया। तो उसको कंधे पर रखकर सम्मान से वैकुंठ पहुंचा के आए गरुड़ जी। ये कथा कौन सुन रहे हैं, ये कथा कौन सुन रहे हैं, नंद बाबा के साथ ब्रजवासी सुन रहे हैं। तो आप में से कोई तो उठा नहीं, सब लोग बैठे रहे, लेकिन नंद बाबा तो तुरंत खड़े हो गए, ऑन द स्पॉट खड़े हो गए। बोले क्यों, क्या हो गया, तो मुझे अभी जाना है। कहाँ जाना है, गंगा जी में स्नान करने के लिए। इतना बड़ा महात्म्य सुना, सांप की पूंछ का स्पर्श हो गया और चतुर्भुज धारण करके चले गए वैकुंठ, मुझे अभी जाना है। लेकिन कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वृंदावन के बाहर जाने का कोई प्लान कृष्ण को अच्छा लगता ही नहीं है। जो करना है वृंदावन में करो, वृंदावन के बाहर जाने का प्लान मत बनाओ, क्योंकि उनका उनके बारे में क्या बताया गया है, वृंदावनम पादम न ए पादम एकम न गच्छति, एक कदम वृंदावन के बाहर कभी रखते नहीं वो। तो अभी पापा को कन्विंस करना है, क्योंकि गंगा जी तो वृंदावन में है नहीं, वो तो वृंदावन के बाहर है, इलाहाबाद में है और किधर किधर दूसरी जगह पर, ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, वृंदावन में तो नहीं है। जाना है तो वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा और उनको रोकना है। तो भगवान ने क्या किया, आप मेरे साथ चलिए। तो सब लोगों को अपने साथ लेके गए, अभी कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन सब जा रहे हैं उनके पीछे। हाँ, और वृंदावन गोवर्धन के बीच में लेके आए उनको, गोवर्धन के बीच में आके खड़े हो गए। और एक दो तीन चार आश्चर्य की बातें एक के बाद एक हो गई। क्या हो गया, चार आश्चर्य की चीजें, 1 2 3 4 वन आफ्टर अनदर हो गया। पहला आश्चर्य क्या हो गया, भगवान से ऐठ से खड़े हो गए बीच में गोवर्धन के, और उनके हृदय से गंगा जी प्रकट हो गए ऐसे, और उल्टा होकर भगवान के सम्मुख खड़े हो गई। नंबर वन का आश्चर्य हो गया, सुनो। और नंबर टू का आश्चर्य क्या हुआ, एक तो गंगा जी स्वयं प्रकट हो गई, सब देख रहे, अरे गंगा जी प्रकट हो गई, हमारे कान्हा के हृदय से गंगा प्रकट हो गई। दूसरा आश्चर्य क्या हुआ, वो पूछ रही है, भगवान क्या आदेश है मेरे लिए, माई गॉड गंगा जी हमारे बालक से पूछ रही है एक आदेश क्या है। तीसरा आश्चर्य, भगवान आदेश दे रहे हैं, कृष्णा इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, आपका जल जो है यहाँ प्रस्तुत कर दो मेरे परिवार के लोगों के लिए। अभी ठीक है, समझो बालक नहीं भाई, समझो आपका नाम क्या,
निया।
सब निया ने बोला कि यहाँ पर आपका जल डाल दो, तो जल आएगा नहीं आएगा, लेकिन कृष्ण ने बोला तो जल आ गया। गंगा जी ने साक्षात अपने दर्शन में जल प्रकट किया, सागर जैसा पहाड़ पूरा बड़ा जलाशय प्रकट कर दिया। तो बाद में फिर आश्चर्य खत्म, तुरंत कपड़े उतारे स्नान कर दिया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर मानसी गंगा प्रकट हो गई, भगवान ने गंगा जी को प्रकट किया गंगा जी ने आदेश मांगा, भगवान ने उनको आदेश दिया कि जल प्रकट करो, फिर गंगा जी ने जल प्रकट किया। ऐसे चार आश्चर्य एक के बाद हो गए। फिर सारे ब्रजवासियों ने स्नान किया, फिर उसके बाद कभी गंगा जी के स्नान करने के लिए ब्रज के बाहर नहीं गए। इसके पीछे भी एक रहस्य है, गंगा जी जमुना जी की बड़ी बहन है। जमुना जी के पहले गंगा जी पृथ्वी पर आई है, इसलिए वो बड़ी बहन है। विष्णु पदगामिनी है, विष्णु के दाहिने पैर के अंगूठे से निकला हुआ जल है वो, उसके बाद जमुना जी आई है। अभी छोटी बहन को भगवान के संघ की प्राप्ति हो रही है इतने उत्कट तरीके से। देखो जन्म हुआ ना तो कूद पड़े उसके अंदर, वो है ना वसुदेव लेके जा रहा है तो कूद पड़े पानी में, कोई लो मेरा लाला गिर गया, ऐसा पुकार रहे हैं। तो तुरंत जमुना जी ने रास्ता दिया तो हाथ में आ गए भगवान। इसका मतलब जन्म होते ही भगवान ने जमुना जी में स्नान किया है ना, गिर गए मतलब स्नान हो गया ना, आप पानी फिसल गए गिर गए उस कुंड में तो क्या हुआ, स्नान हो गया ना आपका, वैसा ही है वो। तो जमुना जी ने फिर गंगा जी से विनती किया, नहीं जमुना नहीं गंगा जी ने जमुना जी से विनती किया कि आपको इतना संग प्राप्त हो रहा है, मुझे भी थोड़ा संग प्राप्त करने का सिफारिश करो उनके साथ, मैं निवेदन कर रही हूँ थोड़ा ब्रज में मुझे भी निवास मिले, मेरा भी ब्रज में स्नान नहीं है। तो ये भगवान को जमुना जी ने विनती किया था गंगा जी के बारे में, बड़ी बहन के बारे में। तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से गंगा जी को ब्रज में स्थान दिया, वो भी गोवर्धन के बीच में, जलाशय के बीच में। और अभी समय नहीं है, लेकिन अभी जो भी जलाशय बनता है ना वो थोड़ी खाली रह जाता है ऐसे ही बिना काम के, हाँ बन गया अभी पड़ा है कुछ नहीं हो रहा है उधर, ऐसा होता है कभी एक बिल्डिंग बना दी कुछ नहीं, नहीं लोग रहने को आते हैं उसके अंदर, खाना बनाते हैं सोते हैं कुछ लीला करते हैं झूला झूलते हैं कुछ कुछ करते रहते हैं। वैसे कुंड बन गया इतना विशाल एक कारण से बना हो, लेकिन उसके बाद में हर रात को उस कुंड को भगवान ने नौका विहार का स्थली बनाया। वो बड़ी लंबी कहानी है लेकिन संक्षेप में, एक रात में ब्रह्मा जी की एक रात को घुसाकर भगवान जी ने यहाँ पर नौका विहार किया। इसका मतलब क्या, समझो आज रात को 7 बजे सूर्यास्त हो गया, नौका विहार चालू हो गया सुबह 4 बजे तक, कितने घंटे हो गए,
9 घंटे
हो गए, 9 घंटे हो गए ना, ओके समझो 9 घंटे हो गए। तो उस 9 घंटे की रात को, रात के अंदर भगवान ने 132 कोटि साल एडजस्ट कर लिए। कोई कर सकता है ऐसे, कोई नहीं कर सकता, केवल भगवान ही कर सकते हैं। 132 करोड़ साल का कालावधि भगवान ने एक रात में ब्रज में समेट लिया और गोपियों को 132 करोड़ रात साल तक नौका विहार करने का आनंद दिया। लेकिन पृथ्वी पर क्या हुआ, नवमी से दशमी बस एक ही तिथि चेंज हो गई। रास में भगवान ने ऐसा ही किया था, जब रास शुरू किया था तो शरद पूर्णिमा थी, जब रास समाप्त हुआ तो कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, एक ही तिथि बदल गई थी, लेकिन 132 करोड़ साल बीच में गुजर गए थे अनुभव के हिसाब से, उतना लंबा अनुभव दिया गोपियों को रासलीला का। तो ये भगवान का सबसे प्रिय नौका विहार का स्थान बना। यहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। हरे कृष्णा। तो एक बताया आपको पुछरी का लोटा, दूसरा बताया मानसी गंगा, और तीसरा हम जिसके सामने बैठे हुए हैं वो राधा कुंड श्याम कुंड। अरिष्टासुर नाम के बैल का वध करने के बाद में भगवान ने श्याम कुंड बनाया और राधा रानी ने श्राधा कुंड बनाया। उसकी विशेषता क्या है, जितने भी तीर्थ है विश्व में मैनिफेस्टेड तीर्थस, वो सब जो व्यक्ति रूप तीर्थ हैं परसोनिफाइड तीर्थस, वो सब आके इसमें समेट गए हैं, सब ने यहाँ पर आश्रय लिया है इस जल के अंदर, और राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण हुआ है। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि इस विश्व में सबसे बड़ा तीर्थ ये होगा, सबसे सर्वोच्च तीर्थ स्थान ये होगा, क्योंकि जितने भी तीर्थ है सबने यहाँ पर आश्रय लिया हुआ है, दे हैव ऑल टेकन शेल्टर ओवर हियर। और वादा किया है कि जो यहाँ पर स्नान करेगा आचमन करेगा स्पर्श करेगा स्मरण करेगा इसका, वो राधा रानी कितनी प्रिय है मुझे उतना वो प्रिय हो जाएगा वो व्यक्ति। एक वरदान, पहला वरदान क्या दिया, सर्वोच्च तीर्थ स्थान होगा। दूसरा वरदान क्या दिया, जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है उतना वो व्यक्ति मुझे प्रिय होगा। तीसरा वरदान क्या दिया, जितना राधा रानी के मन में मेरे लिए प्रेम है उतना प्रेम उसे प्राप्त हो जाएगा। और चौथा वरदान क्या दिया, राधा रानी को भी वो सर्वोच्च प्रिय व्यक्ति होगा जो यहाँ पर स्नान करेगा। और जब ये श्याम कुंड पहले बना तो राधा रानी को भगवान ने कहा कि आप भी यहाँ पर स्नान कर सकते हो, तो बोले नहीं नहीं इसमें आपके अरिष्टासुर को मारने का पाप है जो आपने छोड़ा है इसके अंदर। इसमें स्नान करके आप वो पाप से मुक्त हो गए ना, तो उसमें स्नान करेंगे तो पाप हमें लग जाएगा। नहीं, आई विल मेक माई कुंड सेपरेटली, तो इसलिए अलग कुंड बनाया। लेकिन जब भगवान ने ये पूरा निर्माण होने दिया, निर्माण हो गया, वरदान दिए, तो राजा रानी ने क्या कहा, ध्यान से सुने सब लोग, जो सो रहे हैं वो जाग रहे हैं, सब लोग सुनो। भगवान ने बताया, राजा रानी ने बताया कि अगर ऐसे 100 बैल भी आप मारेंगे, मतलब गोवंश की हत्या करेंगे, तो भी मैं आपके कुंड में स्नान करूंगी। प्रेम है ना वो, बिकॉज ऑफ लव। सो संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि रोज सवेरे 11:48 पर राधा रानी अपने गिने चुने सहेलियों को लेकर श्याम कुंड में स्नान करने को आती है। एक पांडव घाट है वहाँ पर, यहाँ तो मैनिफेस्ट नहीं है, वो पांडव घाट में 12:45 रोज राधा रानी वहाँ पर स्नान करने आती है अपना प्रेम जताने के लिए। पहले मना किया था ना कि मैं नहीं स्नान करूँगी इसके अंदर अरिष्टासुर के वध का पाप है। बाद में कहती है कि आप ऐसे 100 बैल को मारोगे ना, गोवंश की हत्या करोगे, फिर भी मैं आऊँगी यहाँ पर स्नान करने के लिए। ऐसा प्रेम है, और राधा कृष्ण का मिलन है यहाँ पर, राधा और श्याम कुंड। वो कहते हैं हाँ, एक और वरदान भूल गया मैं जो कृष्ण भगवान ने दिया, वो ये है कि ये राधा रानी का स्वयं स्वरूप है, उनका द्रव रूप प्रेम है ये। हर लव लिक्विफाइड फॉर्म इज ओवर हियर। यहाँ का जल जो है जल नहीं है, और राधा रानी का द्रव रूप प्रेम है मेरे लिए, इसलिए वो जो स्पर्श करेगा वो प्रेम प्राप्ति करेगा, ऐसा वरदान दिया है। अच्छा कहानी है ना, वेरी नाइस स्टोरी। सो आप लोग अभी आइए, और जो मंदिर के अंदर जो शिला है ना, वो साक्षात गोवर्धन पर्वत से आई है। 4 साल हो गए उसको लाके, 7 दिसंबर 2016 को उनको यहाँ लाया गया था। बहुत लंबा नियम है उसका, कोई भी व्यक्ति शिला उठाकर लेके आ सकता नहीं है, वो एक ब्रिजवासी आपको भेंट देना चाहिए, उसके बाद में आपको एक गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, फिर वहीं पर आपको उनका मालिश करके इत्र से स्नान कराना है, भोग लगाना है, फिर उनको शयन कराना है, फिर वहाँ से यहाँ ले आना है। तो यहाँ पर आके उनका स्थापना किया, और 7 दिसंबर 2016 के दिन में ये कुंड जितने हैं ना, कितने किनारे हैं इसके, 1, 2, 3, 4 जितने भी स्टेप्स हैं, सारे किनारों में हजारों व्यंजन रखे थे, और उनका 1500 लीटर दूध दही मक्खन से उनका अभिषेक किया गया उनका स्वागत के लिए। उसके पहले गोवर्धन जी गौशाला गए, वहाँ पर गायों का दर्शन किया, वहाँ पर भी मिठाई भोग खाया। उसके बाद में पहले उसके मंदिर गए वृंदावन बिहारी के, वहाँ पर कुछ देर रुके, वहाँ पर कुछ भोग आरती का आनंद लिया। उसके पहले प्रभुपाद जी के रूम पे गए थे, वहाँ पर उनका अनावरण किया गया, और वहाँ पर बहुत 25 सारे भोग लगाए गए महाराज जी के उपस्थिति में, जनता निवास प्रभु की उपस्थिति में वहाँ पर उनका स्वागत किया गया। फिर वहाँ पर बहुत सारा लीला का वर्णन हुआ, हमने बताया कैसे कैसे आए हैं उसको लेकर, वो पूरा महाराज ने सुना। फिर वहाँ से उनको उठाकर कीर्तन करते करते वृंदावन बिहारी के मंदिर में ले गए, वहाँ पर धूमधाम से कीर्तन हुआ, वहाँ पर कुछ देर रुके और कुछ खाया उन्होंने वहाँ पर। वहाँ से लेफ्ट में गौशाला में गए और गायों का खेल देखा उन्होंने, विहार करते हुए गायों का दर्शन किया, कीर्तन सुना, महाराज भी घास में बैठे थे, सब दर्शन कर रहे थे, और वहाँ से उठा के फिर यहाँ पर लेके आए 4th स्थान में। और यहाँ पर हजारों व्यंजन, और उस समय हमने राधा कुंड श्याम कुंड का जल भी आकर इसमें डाला था, इन दोनों कुंड में कई बार डाला है, लेकिन उसको उस समय भी डाला था। तो इस तरह से महाराज जी ने अपने प्रेम के वजह से यहाँ पर इस धाम को प्रकट किया है, ताकि हम लोगों को उसका अनुभव प्राप्त हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।